कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत वंदना नमस्कार जिसमें और प्रार्थना मुख्य अंग होते हैं, उसमें हम चित्रकेतु भगवान बलराम संकृष्ण के नारद जी की शिक्षा और दीक्षा से संपन्न होकर जब साक्षात्कार किया बलराम जी का, तो उनको प्रार्थना कर रहे हैं। 34वां श्लोक, 6ठा स्कंद और 16वां अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चित्रकेतुर्वाच अजित जित सम्मते भी साधु भी भवान जितात्म भी भवता विजितास्ते अपि च भजतां अकामात्मनाम यात्मदो अतिकरुणः। चित्रकेतु कहते हैं अजित जित, भगवान आप अजीत हो, आपको कौन जीत सकता है, परंतु आप जीते जाते हो, आपके भक्त आपको जीत लेते हैं प्रेम से। उन कौन से भक्त, क्या उन भक्तों की विशेषता है जो आपको अपने वश में कर लेते हैं। सममति भी ही, सममति भी ही, जिनका मन पूर्ण रूप से वश में है, जो दुख और सुख में सम है, जिनकी बुद्धि स्तर है। मति का अर्थ बुद्धि भी ले सकते हैं और सम का मतलब समान, दुख सुख में, सुख में समान है, मन जिनका वश में है, और जो साधु भी है, जिनका जीवन साधना युक्त है, इंद्रियों और मन को वश में करके रखते हैं, और भगवान आपको जितात्म भी भवता, जितात्म भी मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में किया है। तो जिसका मन वश में हो, जो सम चित्त सम बुद्धि वाला हो, साधु भाव वाला हो, वो आपको प्रेम पूर्वक अपने प्रेम से जीत लेता है। विजितास्ते अपि च भजताम, और मुख्य उनका एक गुण है कि वो आपकी सेवा करते हैं, भजताम। और तो सेवा के लिए कुछ मांगते हैं क्या? नहीं, अकाम आत्मा नाम, आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल सेवा करते हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। यह आत्म दो, उनको आप अपने आप को दे देते हो, आत्म दो, आप अपने आप को उनको दे देते हो। क्यों? आपकी क्या विलक्षणता है भगवान? अति कारुण, आप अति दयालु हो। तो ये भक्त भगवान को जीत लेता है और भगवान भक्त को अपने वश में कर लेते हैं, एक दूसरे को परस्पर वश में कर लेते हैं। और इनका गुण है, कौन से गुण भक्त में होने चाहिए जो भगवान वश में होता है, और भगवान कैसे अपने भक्तों को अपने आप को दे देते हैं। चित्रकेतु जी कहते हैं हे अजीत भगवान, वैसे तो कोई रास्ता नहीं है आपको वश में करने का, आप तो अजीत है, जीते नहीं जा सकते, परंतु निश्चित रूप से भक्तों के द्वारा, जिनको जिनके मन और इंद्रियां वश में है, आप जीते जाते हो, वो आपको अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि आप अति करुणा कारुणिक हो, बड़े दयालु हो अपने भक्तों के प्रति। और विशेषता यह है कि वो भक्त कुछ आपसे लो कोई चीज मांगते नहीं है अपनी भक्ति के बदले में, और इसलिए आप अपने आप को उनको दे देते हो। और जब आप अपने आप दे देते हो तो वो भक्त भी पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाते हैं। अजीत को कौन जीत सकता है, परंतु भक्त जिनका मन और इंद्रियां वश में है, वो भगवान को वश में कर लेते हैं। वो भक्त आपको वश में कर लेते हैं क्योंकि आप दयालु हो, आप अपने आप उनको दे देते हो, क्योंकि उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान और भगवान के भक्त दोनों आनंद के सागर में गोते खा के बड़ा सुख ले रहे हैं, आनंद का रस आस्वादन कर रहे हैं एक दूसरे को परस्पर बस में करके, प्रेम से भक्त भगवान को बस में कर लेता है और करुणा से भगवान अपने आप को भक्त को अर्पण कर देते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच में एक मधुर रस है जो अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। इस प्रकार से चित्रकेतु भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। हे अजीत भगवान, आप ज्ञानियों और योगियों के द्वारा जीते नहीं जा सकते हो, उनके साधन से आपको जीतना संभव नहीं है। परंतु भक्त निश्चित रूप से जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जो दुख सुख में समान है, सम्मति भी हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया है, ये इच्छाएं तो मन में उत्पन्न होती है, जब मन ही बस में है तो इच्छा तो कुछ मांगने की है नहीं, तो उनकी कोई जब भौतिक इच्छा नहीं है उनके आपकी सेवा के लिए, सेवा आपकी प्रेम पूर्वक करते हैं, इसलिए आप उनके द्वारा जीते जाते हो, वो आपको बस में कर लेते हैं। और आप भक्तों को अपने बस में कर लेते हो, अपने आप को उनको दे देते हो, जो कुछ नहीं मांगते हैं उनको आप अपने आप को दे देते हो, जो मांगते हैं उसको वो चीज़ देते हो, जो कुछ नहीं मांगते हैं आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप ऋणी हो जाते हो, कर्जदार हो जाते हो, तो अपने आप को दे देते हो। इसको कहते हैं भगवान वश में होते हैं, ये भाव भक्ति के स्तर की बात है, ये साधन भक्ति का लक्षण नहीं है, ये सुदुर्लभा भगवान वश में आने वाली भक्ति है, ये भाव भक्ति के लक्षण है। भगवान कहते हैं आप मेरी सेवा करो, मुझसे कोई भौतिक इच्छा, मुझसे कुछ पाने की भौतिक इच्छा नहीं रखते हो, अगर यहां तक के मुक्ति भी नहीं चाहते हो और दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हो, तो फिर मैं आपका ऋणी हो जाता हूं, मैं आपका कैसे ऋण उतार सकता हूं, फिर मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ देने को है नहीं, तो फिर मैं अपने आप को दे देता हूं। तो क्या देते हैं भगवान भक्तों को? भगवान भक्तों को नेत्रों का सुख देते हैं, दर्शन का, कानों को सुख देते हैं भगवान की मधुर वाणी सुनने का, बांसुरी सुनने का, नासिका को सुख देते हैं भगवान के अंग से निकलने वाली अति आकर्षित सौरभ सुगंध जो है उसका, तो भगवान इस प्रकार से अपने भक्त की सारी इंद्रियों को बड़ा आनंद देते हैं और आंखों को दर्शन का सुंदर सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। और आप अपने आप को उनको दे देते हो, फिर तो वो आपके बस में हो जाते हैं। यहाँ साधु भी का अर्थ ज्ञानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे श्लोक में दो शब्द हैं जो भजताम और अकाम आत्मानाम। भजताम केवल भक्ति से लगता है और अकाम आत्मानाम का मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानियों की इच्छा तो होती है दुख निवृत्ति की और ब्रह्म में लीन होने की, योगियों की भी इच्छा होती है सिद्धियों को प्राप्त करने की, इसलिए भजताम तो केवल भक्ति के साथ ही लगेगा, तो इसलिए साधु भी यहाँ केवल भक्तों से ही लगना चाहिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान और भगवान के भक्त दोनों एक दूसरे को जीत लेते हैं, भगवान को भक्त प्रेम पूर्वक सेवा करके जीत लेते हैं और भगवान अपने आप को भक्तों को अर्पण करके उनको अपने बस में कर लेते, एक दूसरे से परस्पर ऐसे जीते जाने के कारण दोनों अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं और एक नित्य संबंध का जो है रस आस्वादन करते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं ये उदाहरण किसका दें जो परस्पर एक दूसरे से जीते गए हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे परम अति उत्तम उदाहरण गोपियां और कृष्ण का दे रहे हैं। गोपियों ने कृष्ण को वश में कर लिया और कृष्ण ने गोपियों को वश में कर लिया। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां कृष्ण के वशीभूत होकर सब काम छोड़कर कृष्ण के पास आ जाते थे, और अगर गोपियों कृष्ण को नहीं मिलती थी तो कृष्ण अधीर हो जाता था उनको प्राप्त करने के लिए। ये एक दूसरे को परस्पर वश में करने का जो सौभाग्य है भगवान ने अर्जुन को अपने आप दे दिया, सारथी बन गए। अर्जुन ने भगवान को वश में कर लिया, आदेश दिया कि सैनों के बीच में रथ को खड़ा कर दो, भगवान ने खड़ा कर दिया। तो भगवान के वश में, अर्जुन के वश में भगवान हो गए। अर्जुन तो भगवान के वश में है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, जैसे कठपुतली ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे कर रहे, एक दूसरे के परस्पर बस में हो गए। ये अति उत्तम उदाहरण प्रभुपाद ने दिया गोपियां और भगवान श्री कृष्ण का। अब प्रभुपाद कहते ज्ञानी और योगी ऐसे भगवान को बस में नहीं कर सकते, ये तो केवल सौभाग्य भक्तों को ही प्रेम भक्ति के कारण उपलब्ध है। यहां शुद्ध भक्तों की जो पहचान कराई गई है, जिन लक्षणों का वर्णन है, उसमें पहला लक्षण है समम मति। इसका मतलब है भक्ति से कभी विचलित नहीं होते, इधर उधर नहीं भटकते हैं। हर परिस्थिति में, दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में, सुख में नहीं, मुश्किल में भी, कैसे भी, प्रहलाद महाराज कितना संकट आया, भक्ति से कभी नहीं हिले। तो ऐसे सममति का मतलब दुख सुख में अपनी भक्ति में निरंतर धारावाहिक सेवा को संपन्न करता रहे, वो है सममति। और श्रीमद् भागवत में भक्ति को अहितुकी अप्रतिहता कहा गया है। अहितुकी का मतलब कुछ मांगेगा नहीं, कुछ मिलेगा इसलिए भक्ति करूंगा, ये उद्देश्य नहीं है। वो अप्रतिहता का मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। जब कोई भक्ति के पीछे कोई लाभ की इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और कोई भी भौतिक कारण भक्ति में रुकावट न डाल सके, कैसी भी परिस्थिति हो भक्ति अपनी धारावाहिक चलती रहे। कैसे, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक पत्थरों को चीरती हुई जाती है, कोई उसकी धारा को रोक नहीं सकता, ऐसे भक्ति को कोई रोकने के लिए बाधा न पड़े, उसको अप्रतिहता कहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में भक्त, क्योंकि भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, इसलिए भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। विशेष जो भक्त और अन्य साधक आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलने वाले ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनके अंदर मुख्य जो यहाँ एक विशेष अंतर बताया गया है वो है, ज्ञानी योगी भगवान से एक होने का प्रयास करते हैं, भगवान के समान होने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्त केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। वो कभी भी ऐसे असंभव एकता के भाव को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। वो भक्त जानते हैं हम नित्य भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के समान कैसे होंगे। इसलिए भगवान को, इसलिए भक्तों को सममति और जित आत्मा कहा जाता है। सममति का मतलब उनकी बुद्धि स्थिर है कि हम भगवान के सेवक हैं, सुख दुख उनको विचलित नहीं कर सकता। जित आत्मा का मतलब उनका मन और इंद्रियां वश में है। उनको तो भगवान से एक होने में कोई रस नहीं, उनको कोई कामना भौतिक एकत्व भगवान से एक होने की कामना ही नहीं है। वो तो असल में यहां तो लिखा है देयर डिजायर इज टू बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल हैंकरिंग, भौतिक लालसा नहीं है, बस कोई इच्छा नहीं है भौतिक लालसा की, केवल भगवान की सेवा की इच्छा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति बिना इच्छा के तो रह नहीं सकता, इच्छा शून्य तो कोई हो नहीं सकता। इच्छा शून्य कोई नहीं हो सकता, परंतु जो इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती है, जो निरंतर बढ़ती रहती है, उसको कामना कहते हैं, काम कहते हैं। जो भगवत गीता में सारे पापों का कारण कहा गया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापाप महाविद्या वेरिणा, ये जो काम है वो इच्छाएं हैं जो कभी पूरे होने की संभावना नहीं है, और जितना मिलता है उतनी ज्यादा बढ़ती हैं। ये इच्छाएं जो हैं भगवत गीता में कामयस्ते तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, क्योंकि ये उनके ज्ञान को हर लेती हैं इच्छाएं, क्योंकि पूरी नहीं होती तो ज्ञान हर जाता है, ये चाहिए वो चाहिए तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे लोग भगवान को वश में नहीं कर सकते, जो इच्छाओं को वश में नहीं कर सकते वो भगवान को कहां वश में कर सकते। आज क्या उस मंदिर में बैठा था तो कोई एक और कोई सन्यासी तो वैष्णव ही था, लेकिन देखा तो एक मंदिर के भक्त को कह रहा था कि यहाँ वृंदावन के में रहने के लिए FRO के लिए लेटर दो फॉरन रजिस्ट्रेशन में कि हमको यहाँ रह सके। तो हमने पूछा ये हमारा तो संस्था इस्कान का तो नहीं लग रहा है। सन्यासी बोला इस्कान का नहीं है, बाहर दूसरे वैष्णव संप्रदाय है। तो मैंने कहा जब वो संप्रदाय एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में वृंदावन के अंदर रहने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ले दे सकती, तो फिर भगवान के धाम में जाने के लिए अनुमति कैसे लेके दे सकेगी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इस संसार में किसी को भगवान की सेवा में वृंदावन करने के लिए सहयोग नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है आपको, तो फिर आपका क्या सामर्थ्य है कि उसको भगवान के धाम में प्रवेश करा दोगे। तो ये बात आश्चर्य लगता है कि लोग फिर भी समझते हैं कि हम हैं अच्छे और कहीं, परंतु सहायता इस्कान की चाहिए, पुस्तक इस्कान का चाहिए, प्रसाद इस्कान का चाहिए, मंदिर का सुंदर दर्शन इस्कान का चाहिए, परंतु हम इस्कान से अलग हैं। ये भी एक विशेष प्रक्रिया चल रही है, उसका कारण क्या है समझ में नहीं आता, परंतु जो भी हो बात यह है कि ऐसे भक्त भगवान को बस में नहीं कर सकते जिनकी इच्छाएं अपने बस में नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त जो है जिनकी कोई भी अवैधिक इच्छा तो है नहीं, अनरीजनेबल जिसका कोई इच्छा है नहीं, तो रीजनेबल इच्छा क्या है, आपकी सेवा करने का सौभाग्य दो, ये रीजनेबल इच्छा है, ये वास्तविक इच्छा है कि भगवान आपकी सेवा में लगाओ। यही तो हरे कृष्ण मंत्र में हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण की सेवा में लगाओ। और ऐसे जिसकी कोई इच्छा नहीं है, अवैध इच्छा नहीं है, सेवा के भाव के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है, तो वो भगवान को बस में कर लेता है। और भगवान भी ऐसे भक्तों को अपने बस में रखते हैं क्योंकि वो शुद्ध है, कोई उनकी भौतिक इच्छा नहीं है और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं, इसलिए वो एक दूसरे को परस्पर वश में कर लेते हैं। ऐसे भक्त मुक्ति नहीं चाहते, वो तो केवल भगवान के चरण कमलों में की सेवा में ही नित्य निरंतर लगा रहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में जहाँ जब भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक उदाहरण दे रहे थे कि वो चावल कूटने की ढेंकी जो है ना, वो स्वर्ग में रखो या नर्ग में रखो या कहीं भी रखो, ढेंकी तो ठंग ठंग करेगी, हमको जहाँ भी ले जाओ हम तो हरे कृष्णा करेंगे, चाहे इस दुनिया में रहें या भगवान के धाम में या कहीं और जाएं, तो हमारा तो यही काम है। तो भक्त कहीं भी हो हर जगह भगवान की सेवा ही करेगा, और कोई उसका काम नहीं, उद्देश्य नहीं है। भगवान की सेवा भक्त करता है और कुछ नहीं मांगता है वापस, वापसी में, लोट में कोई उसके बदले में कहा जाए कि फल नहीं मांगता है, तो भगवान की कृपा को जीत लेता है। भगवान तो स्वभाव से ही दयालु है, और जब देखता है कि मेरा सेवक कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता है तो भगवान उसके बस में आ जाता है। और ऐसे भक्त कौन होते हैं? सवई मन कर कृष्ण पदार अविंदयो वाचान सिग्वे कुंट गुणान वरण्य। ये अम्बरीश महाराज नौदा भक्ति के सब अंगों का सर्वांग भक्ति है। मन भगवान के चरण कमलों के ध्यान में सदा निमग्न रहता है, वाणी भगवान के गुणों का वर्णन करती है, चरणों से भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई, भगवान के भक्तों की सेवा, नासिका से भगवान को अर्पण किए हुए तुलसी और फूल और अगरबत्ती का सौरभ लेके अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, कानों से हरि कीर्तन सुनते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, माथा भगवान के चरणों में झुका लेते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपनी सेवा का सौभाग्य देता है जो शरणागत है और भौतिक इच्छाओं से शून्य है। और तब भगवान उस भक्त के बस में है और उसको वो सब सेवा की सुविधाएं दे देते हैं। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। तवा विभव खलो भगवन जगतोद्य स्थिति लयादिनी विश्व सृजस्ते अंसांसास्तत्र मृषा स्प्रधन्ति पृथिग अभिमत्तया। तब विभव भगवान आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य खलव निश्चित रूप से आपका ऐश्वर्य क्या है? बोला ये जगत देखो भगवान, ये जगत जिसकी आप सृष्टि करते हैं, जिसकी स्थिति पालन करते हैं, जिसका संहार करते हैं, ये आपका वैभव है, ये आपका ऐश्वर्य है। विश्व सृजेते अंशांश और दूसरे तो भगवान ने कहा क्या ब्रह्मा करता है ना सृष्टि? बोला वो ब्रह्मा आदि जो सृष्टि करते हैं वो आपके अंश के भी अंश हैं। इसका मतलब वो जीव है प्राय, परंतु फिर भी तत्र मिर्षा स्प्रधानी पृथिग अभिमत्या, वो अपने आप को आपसे अलग सृष्टि करने की एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। मैंने किए सृष्टि नहीं, मैं करूंगा सृष्टि, ये अभिमत्या है, ये उनका मत झूठा है। तो हे मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, ये भौतिक सृष्टि, इसका पालन, इसका संहार, ये आपकी विभूति है, ये आपका वैभव है, इसको कहते हैं भगवान की सृष्टि लीला है। ब्रह्मा आदि भी सृष्टि करते हैं परंतु वो तो आपके अंश के अंश हैं। उनका छोटी सी शक्ति जिसके द्वारा वो सृष्टि करते हैं, इससे वो ईश्वर नहीं बन जाते, भगवान नहीं बन जाते। ऐसी जिसकी चेतना है, जो अपने आप को भगवान से अलग ईश्वर मानता है, वो तो झूठा विचार है, उसका कोई महत्व नहीं। हे भगवान, सृष्टि स्थिति और प्रलय इस जगत की आपकी महानता है, आपकी बड़ाई है। हे जगत सृष्टा, जो दूसरे जगत की सृष्टि करते हैं वो आपके अंश का अंश है। अगर वो आपसे अलग समझते हैं तो उनका वो तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है। अब पहले तो चित्रकेतु ने भगवान और भक्तों के बीच में परस्पर प्रेम और एक दूसरे के बस में कर लेना और एक दूसरे को अर्पण कर देना, समर्पण कर देने का वर्णन किया। अब चित्रकेतु भगवान की शक्ति या विभूतियां या महानता का वर्णन कर रहे हैं तीन श्लोकों में। विभव का अर्थ है भगवान की महानता, भगवान महान है, सृष्टि करते हैं, संरक्षण करते हैं, संहार करते हैं, ये आपकी महानता है। भगवान कहते हैं परंतु ब्रह्मा सृष्टि करता है ना, बोला ब्रह्मा करे सृष्टि या शिव करे संहार, वो दोनों आपके अंश हैं। ब्रह्मा और शिव दोनों महान भक्त भी तो है ना, बोलो भक्त हैं निश्चित रूप से, परंतु वो अपने आप को स्वामी भी मानते हैं और एक दूसरे से स्पर्धा होती है कि कौन बड़ा है। कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूं, कोई कहता है मैं शिव हूं, कोई कहता है मैं सूर्य हूं, तो वो अभी भी अपनी पहचान अलग रखना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भक्त जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का शरण ले लिया है, वो ये जानता है कि भगवान की सृष्टि करने की जो शक्ति है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी है, और ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चुंटी तक ये जितने जीव हैं ये सब तो भगवान का अंश हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, तो ये तो सारे भगवान के अंश हैं। जैसे अग्नि की एक चिंगारी ऐसे है, तो क्योंकि भगवान को सृष्टि करने का सामर्थ्य है तो भगवान के अंश को भी छोटी सी सृष्टि करने का सामर्थ्य तो है ही। अब प्रभुपाद जी आधुनिक विज्ञानियों के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं आज के तथा कथित नाम के वैज्ञानिक भौतिक जगत में बहुत बड़ा अहंकार करके अब हमने ये बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बड़ी एक खोज कर दी, एक हवाई जहाज बना दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं उनसे पूछो कि पहली बात, दो बातें, पहली बात हवाई जहाज बनाने के लिए जो बुद्धि है वो किसने दी, और हवाई जहाज बनने के लिए जो सामग्री चाहिए वो किसने पैदा की, हवाई जहाज बनाने वाले को कौन पैदा करने वाला, उसके दिमाग में इतनी अकल देने वाला कौन, और जिन वस्तुओं से हवाई जहाज बनाया है, जो मसाला है उसमें डाला है, वो कहां से पैदा किया। तो इन दोनों का उनके पास उत्तर नहीं है। तो जिसने हवाई जहाज बनाने वाले को बनाया वो हवाई जहाज बनाने वाले से महान हुआ कि नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद जी एक अद्भुत आगे बात कहेंगे, तो ये बुद्धि किसने दी उसको। भगवान कहते हैं भगवत गीता में बुद्धि तो मैं ही देता हूं, मत समर्थ ज्ञानम अपोहनम च। एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर में, और उनका सीमेंट का फैक्ट्री था। सो प्रभुपाद ने पूछा, क्या करते हैं आप भाई? बोला, मेरा सीमेंट का फैक्ट्री है। अच्छा, तो सीमेंट कैसे बनती है? बोला, पहाड़ को के पत्थर को पीस के बनाते हैं। बोला, पहाड़ किसने बनाया? बोला, भगवान ने। और सीमेंट किसके नाम से बेचते? बोला, हमारे नाम से। बोला, पहाड़ भगवान का, मशीनें आपकी काम करती है, उस लोहा वो भगवान ने बनाया, और उसके ऊपर आप नाम अपना रखते हैं, ये तो चोर हो गए ना। माल भगवान का और नाम आपका, ये तो चोरी हुई ना। तो उसने कहा, इसलिए तो हम भगवान की सेवा के लिए देखो मंदिर में आए हैं, ये सेवा करते हैं मंदिर की। बोला, हाँ, ज्यादा चुराते हो, थोड़ा वापस करते हो भगवान को। तो भाऊपाद का कहने का तात्पर्य यह था कि ये क्यों नहीं समझते हो कि सब चीजें जो आप कर रहे हो, जो बनाई, पहला तो ये उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, और फिर दिया कि आजकल पाश्चात्य देशों में बहुत सी गाड़ियां बन रही, अब तो हमारे भारत में भी गाड़ियां गलियों में खड़ी होने की जगह नहीं है, रोड पे चलने की जगह नहीं है। तो गाड़ियां बनाने वाले ने गाड़ियां तो बना दी, और जब गाड़ियां खराब होती हैं तो उसको रखने के लिए जगह नहीं है, ये सब बड़ी समस्या है। गाड़ियां बनाने का सामग्री सारी तो कुदरत में भगवान ने बनाई, प्रकृति ने बनाई, बनाने वालों को अकल भगवान ने दिया, और जब खराब हो जाती है तो उनको डिस्पोज करना, उनको रखना समस्या हो जाती है, क्या करें। और भगवान इस दुनिया सारी को रखने के लिए भी व्यवस्था करते हैं, बड़ी समस्या है कि कहां रखें इनको। तो वास्तव जो सृष्टि करता है वो तो भगवान है, बीच में भगवान के अंशों को छोटी छोटी सृष्टि करने का कोई भगवान ने सौभाग्य दिया है, जो उसको भगवान के लिए बनाएगा वो भाग्यशाली है, जो उस अपना नाम रखेगा वो मूर्ख अपना समय गंवाएगा और सब कुछ यही रह जाएगा। जिस बुद्धि से वो कार्य करता है वो बुद्धि भगवान ने दी है, जो सामग्री उपयोग में लाता है वो भगवान ने दी है, परंतु फिर भी उसकी सारी बनाई हुई चीजें उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाती है जब काम की नहीं होती। तो ऐसे तथाकथित अपने आप को जो बड़ा आविष्कार करने वाले, बड़ा नई नई खोज करने वाले, नई इन्वेंशन करने वाले, नवी क्रिएशन करने वाले कहते हैं ना, उनको क्या इतना बड़ा महत्व संसार दे रहा है? वास्तव में भगवान जो सब चीजों की सृष्टि करते हैं वही महान है, उसी का ही सब गुणगान करना चाहिए, उसकी महिमा, उसकी महानता, उसकी विभूतियों का वर्णन करना चाहिए, वही ये सब कुछ सृष्टि पालन और संहार इतना सुचारू रूप से करते हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं। दुनिया वाले तो नाम के हैं, परमाणु परम महतो स्वदा तमाद्य अंता अंतरवरी अंता अंतरवर्ती त्रयी विदुर आदाव अन्ते पिच सत्वानां यद्दुर्वं तदेवांतराले अपि। परमाणु, छोटे से छोटे आइटम में, परमाणु में परम महत्व, और सबसे बड़े पूरे ब्रह्मांड, चाहे छोटा सा परमाणु हो या पूरा ब्रह्मांड हो, त्वम आद्य अंत, उसका आद भी आप हो, शुरुआत भी आप हो, और उसका अंत भी आप हो। त्वम, आप, आद्य अंत, आद्य अंतरा अंत, अंतरा अंत, बीच भी आप और अंत भी आप, अंतरा अंत, बीच में वर्ती त्रयी विद्रह, त्रयी विद्रह का मतलब आदि मध्य और अंत, अंते जब सब समावत हो जाता है फिर भी सत्वानाम आपका अस्तित्व तो रहता है। आप है ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब अटल, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सके, जैसे का जैसे रहे, ध्रुव कहते हैं अटल को, नित्य शाश्वत सदा रहने वाला। अंतराले बीच में भी, भगवान आप आद में थे, मध्य में हैं और अंत में भी रहते हैं सब चीजों के, चाहे वो प्रमाण हो चाहे वो पूरा जगत महान हो, छोटा हो या महा बड़ा हो, अणु परमाणु हो या महान हो, पूरे ब्रह्मांड की ये सृष्टि है जो भौतिक, उसके आद मध्य अंत में आपका तो अस्तित्व है ही, परंतु आपका अपना कोई आद नहीं मध्य नहीं अंत नहीं, सृष्टि के आद मध्य अंत में आप रहते हैं, परंतु आपका मध्य आपका ना आरंभ है ना मध्य है ना अंत है। आप तीनों अवस्थाओं में वैसे के वैसे रहते हैं, इसलिए आपको ध्रुव कहते हैं। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी, तब भी आप अपनी शक्तियों के साथ रहेंगे। अणु का एक अर्थ इन्होंने लिखा है कि सूक्ष्म कारण जगत का या स्थूल कारण, जगत का सूक्ष्म या स्थूल कारण जो भी है वो आप हो, आप जगत के आरंभ में हो मध्य में हो और अंत में भी हो, परंतु आपका ना अंत है ना आद है ना मध्य है, क्योंकि आप ध्रुव हैं। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी आप रहेंगे। आप भगवान सृष्टि करता हो, आप वास्तव में नित्य, आपका रूप नित्य है, आप आदि कारण हो, आप परमाणु कारण भी हो, आप सूक्ष्म कारण भी हो, और इस पूरे जगत का परम महत कारण भी आप ही हो। आप आद में थे मध्य में हो अंत में हो, परंतु आपका ना आद है ना मध्य है ना अंत है। आप कार्य कारण में सदा एक रस रहते हो, सत्वानाम आपका अस्तित्व ध्रुवम है। अब एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सोना तो सोना ही है, कोई भी आभूषण बनाओ, पिघलाओ, नया बनाओ, हार बनाओ, कंगन बनाओ, कान का बाला बनाओ, सर का मुकुट बनाओ, पर सोना तो सोना ही रहेगा। तो भगवान सोने के समान है, बाकी सब बदलनी चीजें आभूषण के समान है, इसलिए आपका अस्तित्व ध्रुव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जो बनता है वो थोड़ी देर रहता है, परंतु आप नित्य हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के भाव में ब्रह्मा संहिता का श्लोक देते हैं, अद्वैतम अच्युत अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणं पुरुषं नवयौवनं च वैदेषु दुर्लभम् दुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आदिपुरुष गोविंद की हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, जो अद्वैत है, दो नहीं एक है, अचूत है, कभी अपने पद से नीचे नहीं गिरते, अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, अनंत रूपम उनके अनंत रूप है, आद्यम पहले है, पुराणम सबसे पुराने है, पुरुषम भोक्ता है, नव यौवनम सदा 15 साल के रहते, वेदेश दुर्लभम वेदों से ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, अदुर्लभम आत्म भक्तों जो भगवान के अपने प्रेमी भक्त हैं उनको मिल जाते हैं। तो ये कह के प्रभुपाद जी कहना ये चाहते हैं कि भगवान को कोई कारण नहीं है, परंतु भगवान सबके कारण है, भगवान कार्य कारण से परे है, वो नित्य शाश्वत है, उनका अस्तित्व नित्य है शाश्वत है, दूसरे ब्रह्म संहिता में कहा है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी है और एक छोटे परमाणु में भी है। एक परमाणु में, एक छोटे से आइटम में भगवान आ जाते हैं। भगवान नहीं आए तो किसी का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। भगवान के आने से ही उनमें जान आती है। भगवान गया तो वो जड़ हो गया। जो विज्ञानक प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो विज्ञानक कहते हैं कि पानी दो हाइड्रो H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनता है, फिर इतना बड़ा समुंदर देखते हैं पानी का तो इतना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से लाए, किसने पैदा किया, किसने ये बनाया। अब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, प्रभुपाद जी ये कहते हैं। फिर कैसे कहते कि सभी चीजें जो है रसायन से आई है, केमिकल से आई है। केमिकल से कुछ नहीं आया, केमिकल भगवान से आया है, भगवान इसका कारण है। ऐसे अनंत हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे कितने और तत्व हैं जो भगवान ने सृष्टि किए हैं और उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब जो कुछ भी बनता है उसके पीछे जीवन प्रक्रिया होनी चाहिए। जड़ दूसरे जड़ को पैदा नहीं कर सकता है, जीवन ही जड़ को पैदा कर सकता है। ये प्रभुपाद का पुस्तक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अब एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये नींबू का पेड़ है, इससे असंख्य नींबू बन जाए, नींबू से सिट्रिक एसिड बन गया, तो अब पेड़ से सिट्रिक एसिड बना के सिट्रिक एसिड से पेड़ बना, पेड़ से सिट्रिक एसिड बना। ऐसे भगवान सबका कारण है और सब कुछ भगवान से बना है। वो वृक्ष को भगवान ने बनाया, वृक्ष ने नींबू को बनाया, नींबू ने सिट्रिक एसिड दिया। भगवान कहते हैं मैं सबका बीजम माम सर्वभूतानाम। तो सब की उत्पत्ति का आदि कारण भगवान है। जो कुछ भी रसायन संसार में है वो भगवान ने बनाई। क्या भगवान स्वयं ने बनाई? नहीं, भगवान की शक्ति के द्वारा इन सब का निर्माण हुआ है। और जब इन सब का प्रलय के समय विनाश हो जाएगा तो ये सब भगवान में समा जाएंगे। भगवान गर्भदक्षाई में ये सब समा जाएंगे। इसलिए श्लोक में कहा है आदाव अंते पिचा स्थामानाम सत्वानाम यद ध्रुवम तदेवांतराले अपि। ध्रुव का मतलब शाश्वत, नित्य, सदा रहने वाला। तो ऐसा ध्रुवम तो तत्व केवल कृष्ण है, ये जगत नहीं। भगवद गीता में भगवान कहा है अहम आदि रि देवानाम, देवताओं को भी मैंने पैदा किया, उनका मैं आदि हूं। मत सर्वम प्रवर्तते, सबको मेरी प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, काम करते हैं। अर्जुन ने तो कह दिया भगवान आप ही पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आप शाश्वत पुरुष हो, नित्य रहने वाले ध्रुव हो, दिव्य हो, आदि देव हो, अजन्मा हो और महान हो। और ब्रह्म संहिता ने भी कह दिया गोविंदम आदि पुरुषम। तो ये भगवान की महानता का वर्णन है। इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, क्षत्यादिभिः किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैः अंडकोश यत्र पतत्य अणुकल्पः सांडकोटिकोटिभिः तदनन्तः। क्षति वैसे कहते हैं पृथ्वी का, क्षत्रिय आदि भी का मतलब पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि सब। एष किलावृत, ये जितने भी हैं ये सब निश्चित रूप से पर्दा बनते हैं, आवरण बनते हैं, ढकते हैं, आवृत। सात आवरण हैं सप्त भी, और दस गुण अंतर, एक आवरण दूसरे से दस गुना ज्यादा मोटा है। किसका? अंड कोश है इस ब्रह्मांड का। यत्र पतते अणुकल्प, यत्र पतते अणुकल्प स अंड कोटि कोटि भी तद अनंत। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उन सब की आप सृष्टि करते हो, इसलिए आपको अनंत कहा जाता है। हर एक ब्रह्मांड सात पर्दों से ढका हुआ है, और पहला पर्दा पृथ्वी का, उससे दस गुना भारी पर्दा जल का, उससे दस गुना भारी अग्नि का, उससे दस गुना भारी हवा का, उससे दस गुना भारी आकाश का, उससे दस गुना भारी पूर्ण प्रकृति तत्व का, उससे दस गुना भारी झूठे अहंकार का, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक दूसरे से बड़े हैं वो, पर वो एक ऐसे आपस में घूम रहे हैं जैसे कोई एक छोटा सा परमाणु घूम रहा है, और इन सब के आप ही सृजन करने वालों, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। तो एक ब्रह्मांड के सात पर्दे हैं, और एक दूसरे से दस गुना ज्यादा मोटा है, और ये सब परमाणु की तरह घूम रहे हैं, और ये अनंत है, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। अभी तक जो भगवान का वर्णन किया था वो किया था काल में, के सृष्टि के समय है, पालन के समय है, संहार के समय है, तो सर्व काल में है। अब कहते हैं काल का बात हो गया, अब कहते हैं सब स्थान में है, कहते देश काल, ये सब देश में है, सब काल में भगवान है, अब सब देश में है। सब देश का मतलब सब ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के सात पर्दे और एक दूसरे से दस गुना ज्यादा मोटे। प्रभुपाद इसको भी ब्रह्म संहिता से जोड़ते हैं, इसको रखते हैं, कल पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
अच्छा, ये दो चीजें समझनी थी। एक तो जो कल वाला श्लोक हमने जहाँ खत्म किया था 33 पे, उसमें प्रभुपाद जी ने परपट में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड विद मुंडेन वर्ड्स। ये क्या मतलब हुआ इसका?
उसके अंदर जो भाव है, क्योंकि 33 मेरे ख्याल में हमारा उस पढ़ने वाले प्रेयर में नहीं था, वो कंटिन्यूटी के लिए था, तो मैं उसको देखा तो ज़रूर होगा। मैं समझता हूँ भाव ये है कि भगवान की प्रार्थना, जो शुद्ध भक्त है, जो भौतिक स्तर से ऊपर है, उसके मुख से अच्छी लगती है। उसमें मैं समझता हूँ कि सनातन गोस्वामी के उसका उदाहरण दिया है कि सर्प के मुख से दूध भले अच्छा हो, सर्प के उसमें डाल दे विष तो वो बड़ा भयानक हो जाता है। उसी मैं समझता हूँ उसी में ये श्लोक दिया होगा।
जी प्रभु, उसी में दिया हुआ है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा था, जैसे कई कथाएं सामने आती हैं जिसमें कोई मतलब, चाहे आप कह दो कि कोई भी आम आदमी भी भगवान के शुद्ध मन से, ऑफ कोर्स मतलब उसका भाव शुद्ध है, लेकिन फिर भी वो ऑफर करता है, एक्सेप्ट करते हैं।
इसलिए मुख्य बात ये, दो मुख्य बात यहाँ क्या असल में कही गई है कि प्रार्थना या भगवान का भजन लिखना या भगवान का गुणगान करना, वो जो कम से कम भाव स्तर से ऊपर हो और जो शुद्ध अंतःकरण वाला हो, उसके शब्द जो है वो उसको दोहराना चाहिए। अपनी अपनी वाणी शुद्ध नहीं है तो अच्छा है कि पहले जो प्रार्थना की है उन्हीं प्रार्थनाओं का भाव लेके, अपने प्रणाम में हम कह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं भजन बना के और कहूँ सब गाओ।
ठीक है, क्लियर है, मैं समझ गया।
हाँ, इसका मतलब है जैसे अब हम कहते हैं इतने सारे हमारे महात्मा साधु हैं, लेकिन भजन आज भी हम जो है नरोत्तम दास ठाकुर के गाते हैं या भक्ति विनायक ठाकुर के गाते हैं। तो जिन जो जो शुद्ध अवस्था में है उसकी वाणी शुद्ध से, जो भगवान उनकी वाणी जो है वो वेद वाणी के समान है। प्रभुपाद जी कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के भजन वेदों का सरल भाषा में जो है वर्णन है। तो जिनकी वाणी असल में भगवान की प्रेरणा से निकल ले, वो प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण होती है। ऐसे भजन बहुत से लोग गाते हैं अपने मन से, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न सुनने वाले के ऊपर, न भगवान के ऊपर, न वो स्वयं के ऊपर।
जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जो आज का श्लोक है चित्रकेतु जी, पहला जो श्लोक बोल रहे हैं उसके अंदर जो ट्रांसलेशन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दे रहे हैं, उसमें भाजी एक चीज मैं ऐसे मन में आ रहा था, मैं इसलिए पूछूं। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक दो सिचुएशंस हैं कि एक भगवान जो है कॉन्कर्ड बाय डिवोटीज हु हैव कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, एक दूसरा कि यू आर मर्सीफुल एंड गिव योर सेल्फ to those who worship you without material desires. So
चारों कठे चाहिए, मन भी वश में हो, इंद्रियां भी वश में हो, दुख सुख में भक्ति में लगा रहे, और कोई भगवान से भौतिक इच्छा न करे, उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं और वो उसके वश में भगवान हो जाते हैं। ये सारे ही गुण है असल में जो भगवान को वश में कर सकते हैं, अलग अलग नहीं है कि वो कर सकते हैं, दो विभाग नहीं है, दो जगहों पे डिस्क्रिप्शन है श्लोक में, इसलिए ऊपर नीचे लिखा है। परंतु ये चारों गुण भगवान को वश में करने वाले भक्त की पहचान है। भगवान का एक मुख्य गुण है कि वो करुणा करके ऐसे भक्त को अपने आप देख को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं, इसलिए भक्त भगवान के वश में हो जाता है। पर भगवान देते उसको है जिसमें चार गुण हो। भगवान में करुणा का गुण है और भक्त में चार गुण होने चाहिए। पहला है सम्मति, और दूसरा है इंद्रियां और मन वश में, तीसरा है निरंतर भक्ति करे भजताम, और अकाम और कोई कामना भौतिक न करे, तो भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि भगवान दयालु है और वो भगवान के बस में हो जाता है और भगवान उसके बस में हो जाता है। तो ये चारों एक जगह, मतलब चारों गुण है भक्त के।
ठीक है, हाँ जी, थैंक यू।
हरे कृष्णा। ओके, श्री प्रभुपाद की जय।
जय
गौरंग,
जय जय।